स्थान ब्रह्म मंदिर ढाका पूरी बंगाल। रविवार 12 दिसंबर 1886 ईस्वी। उद्बोधन। बाल्यकाल में ग्रामों में जाकर देखता था, गांव के बच्चे सुबह से सारा दिन आनंदपूर्वक खेल में ही मस्त रहते हैं, पर शाम को जब उनकी माँ आकर पुकारती है तब वे यह कहकर कि वो मेरी माँ बुला रही है, सब खेल छोड़कर माँ की ओर भागते थे। माँ की आवाज़ सुनकर बच्चे को खेल भी अब प्रिय नहीं लगता, वह सब छोड़कर माँ के पास जाऊंगा, यही रट लगाता है। बचपन में इसका सार नहीं समझ पाता था, पर अब देखता हूं हम भी संसार की क्रीड़ा में मस्त रहकर विश्व जननी को भूल जाते हैं। कई बार उनकी पुकार हमारे कानों में आती है, फिर भी हम उन्हें स्मरण नहीं करते, तथापि वे बीच बीच में पुकारती जाती हैं। चाहे कितनी भी आसक्ति में हम रहें, उनकी पुकार ठीक से कानों में प्रवेश करें तो हम उनकी ओर दौड़े बिना नहीं रह पाएंगे। केवल पुण्यात्मा नहीं, पापियों को भी वे पुकारती हैं। इन्हीं की पुकार से उपासना प्रारंभ होती है। जो सदा संसार और विषय में आसक्त हैं, वे कैसे उनकी पूजा कर सकेंगे? सप्ताह भर दिन भर संसार में आसक्त रहकर यदि थोड़ा सा समय निकालकर कैसे जगत जननी की पूजा करूंगा? माँ की जब पुकार कर कहती है शाम हुई अब तो घर चलो, तब ध्वनि सुन सोचते हैं कि कहाँ से आ रही है ये आवाज़। जब हम यह प्रकार सुन लें तब स्तुति गान करें या ना करें, यदि केवल माँ कहकर एक बार भी प्रणाम कर लें तो अच्छी तरह उपासना हो गई समझो। पर यदि वह पुकार तो सुनी ही नहीं और स्तुति स्तवन करते जा रहे हैं तो उपासना ठीक से हुई ही नहीं जानो। ये सब समय हमें पुकार रही है, हम व्यस्त हैं, हम अशांत हैं, इसी से उनकी पुकार सुन नहीं पाते। उपासना के समय सब अन्य चिंता तथा आसक्तियों को छोड़कर मन को शांत करना होगा। मन स्थिर होगा तो वह पुकार भी सुन सकेंगे। इस तरह की भावना लेकर उपासना में जाओगे तभी उपासना होगी। हम लोग यह लोग परलोक की एकमात्र आश्रय स्थल प्रभु की उपासना करने यहाँ आए हैं। यह उपासना व्यर्थ ना हो जाए, यह यथार्थ उपासना हो, इसके लिए प्रयत्न करना होगा। उनकी उपासना वे ही न करवा लें तो उपासना होती नहीं। उनकी पुकार सुनकर ही हम उनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। December 18, 1886 उपदेश। रावण ने सीता का हरण किया, श्री राम ने समुद्र में सेतु बंधन करके सीता जी का उद्धार किया। श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी कि रावण के वंश का नाश करेंगे और यही हुआ। रावण और कुंभकर्ण सारे पुत्रों सहित मारे गए, केवल विभीषण बचा रहा। तब राम ने सीता जी को लाने का आदेश दिया। सीता जी पर्दे से ढकी पालकी में आई। श्री राम ने कहा यहाँ सभी पुत्रवत हैं, अतः आवरण हटाकर सबके सामने से आओ। सीता जी के आने पर श्री राम ने कहा मैंने राक्षसों के हाथों से तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। इतना सुनते ही लक्ष्मण और हनुमान रोने लगे। उन्होंने कहा यदि सीता माता को आप ग्रहण नहीं करेंगे तो इतनी कठिनाई से सेतु बांधकर रावण के वंश का समूल नाश कर सीता का उद्धार ही क्यों किया। तब उसी समय सीता जी ने कहा, लक्ष्मण तुम अग्नि प्रज्वलित करो, मैं सबके सामने अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को प्रमाणित करूंगी। तुलसीदास जी ने मानस में इसकी व्याख्या कुछ भिन्न प्रकार से की है। उन्होंने कहा है, रावण क्या है? वह मोह है, परमेश्वर को भूलकर संसार को अपना मान बैठना ही मोह है। घर बार, रुपये, पैसे, स्त्री पुत्र, यह संसार नहीं है, इन पर आसक्ति ही संसार है। इस आसक्ति मोह को तुलसीदास जी ने रावण कहा है, सीता जीवात्मा को कहा है और संसार को लंका बताया है। परमेश्वर जब जीवात्मा का उद्धार करते हैं तब पत्थर के समान सहनशील और तीर्ण से नीचे पड़े हुए व्यक्ति जो परमेश्वर के भक्त हैं उनके द्वारा कितनी शिक्षा दिया करते हैं। वे जब जीवात्मा को मोह मुक्त करते हैं तभी वह आत्मा मोह मुक्त ज्ञानी होकर यह समझ पाता है कि संसार असार है, भगवान ही सार है। पर परमेश्वर को अपना बनाना हो तो अग्नि परीक्षा देनी होती है। मेरे प्रभु या विश्व चराचर के स्वामी, वे मेरे देवता हैं, मैं उनका हूँ, वे सबके कर्ता प्राणों के प्राण हैं, जीवन सर्वस्व एकमात्र वे ही मेरे हैं, वे शक्तिमान मेरे अपने हैं। एक बार उन्हें अपना कह सकें तो फिर कोई चिंता नहीं रह जाती, कोई भय नहीं रह जाता। मुख से अपना कहने पर भी जरा भी झंझट पीड़ा आए तो व्यग्र अस्थिर और चिंतान्वित हो उठते हैं। इस प्रकार यदि हो तो समझिए हम उन्हें यथार्थ अपना मानकर विश्वास नहीं कर सके हैं। यदि उन्हें ही अपना मान सके तो चिंता या भय नहीं रह सकता है। हम ज्ञानी और धार्मिक बनकर पाप का परित्याग कर सकते हैं। अपने ही स्वार्थ के लिए परमेश्वर हमें निष्पाप कर दो या प्रार्थना भी करें तो यह उपयुक्त है, किंतु उन्हें अपना बनाना और उन्हीं का हो जाना बड़ा कठिन है। जिन्होंने उन्हें अपना मान लिया है वे क्या अपने लिए कुछ कह सकते हैं? वे अपने मंगल करने के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। परमेश्वर जब मानव आत्मा की यह अवस्था देखते हैं तो अच्छे से अच्छा भक्त तैयार करने के लिए एक एक करके परीक्षा करते जाते हैं। कहते हैं, अच्छा अब यह भी ले लूं, यदि कष्ट होता है तो नहीं लूंगा। तब यदि मानव आत्मा यह कह सके, प्रभु तुम्हें सर्वस्व देता हूं, ले लो, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर स्वीकार कर सकता हूं, तब वे मन की सारी वासनाएं एक एक करके दूर कर देते हैं। यही अग्नि परीक्षा प्रारंभ होता है। चारों ओर से गालियां, अपमान, रोग, शोक, अत्याचार, ये सब अग्नि परीक्षाएं आएंगी। जब इसमें जल भूनकर जीवन मृत अर्थात जीवन रहते भी मृत के समान हो सके तभी वे अपना बनाकर ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें अपना बनाने के लिए सर्वस्व विसर्जित करना पड़ता है, एकदम पूर्ण आत्मसमर्पण करना पड़ता है। वे केवल सुख ही देंगे ऐसी नहीं, दुख भी देंगे। इन परीक्षाओं को दिए बिना उन्हें अपना बना नहीं सकते। हम धार्मिक सहजी बन सकते हैं, मुक्ति पाना भी सहज है, परंतु उन्हें अपना बनाना कठिन है। मैं तुच्छ हूं, कैसे विश्व के अधिपति को अपना बना सकूंगा? मैं असार हूं, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? वे कुछ मूल्य नहीं चाहते, वे सर्वज्ञ हैं, तथापि परीक्षा क्यों लेते हैं? वे दिखाते हैं कि हम क्या उन्हें ही चाहते हैं। उन्हें तो सब मालूम है, फिर परीक्षा किस लिए लेते हैं? वे परीक्षा करके हमें अपने योग्य बनाते हैं। मुक्ति के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है, पर वह सहज है। उन्हें अपना बनाने, उनका दासयक बनने के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। पत्थर की तरह वज्राघात सहना होगा, वृक्ष की तरह सहिष्णु बनकर आंधी तूफान वर्षा सब झेलना होगा। मेरे प्रभु, मैं और कुछ भी नहीं चाहता हूं, केवल तुम्हें ही चाहता हूं। हे प्रभु, तुम मुझे दुख अपमान शोक में जलाकर तपाकर परीक्षा लो तो भी क्या। मैं यदि कहूं मुझे अपना बनाने के लिए प्रभु जो चाहे करे, तब भी कोई लात मारे, अपमानित या अत्याचार करे तो भी क्या होगा। मैं यदि यह सब अग्नि परीक्षा ना देना चाहूं तो वे कहेंगे जहां चाहो जाओ। मेरे अपमान, मेरी दरिद्रता, मेरे दुख का क्या मूल्य है? ये सब तुच्छ है, सब बाजीगर के खेल की तरह मिथ्या सपने दिखा रहे हैं। यदि उनको पा सके तो शरीर काट कर टुकड़े टुकड़े करके उसमें कोई नमक भी भर दे तो भी क्या यह कोई परीक्षा है? इस प्रकार हर परीक्षा को उनकी कृपा, उनका दान या प्रसाद मानकर स्वीकार कर सकें। मन की ऐसी अवस्था यदि कभी आए तब उनकी ओर दृष्टि गई है ऐसा समझा जा सकता है। जब मैं नवजात शिशु था, कोई शक्ति न थी, कोई भी मार डाल सकता था, तब पिता माता के माध्यम से प्रभु ने मेरी रक्षा की। कितने ही आत्मी बंधु थे, वे मरकर कहाँ चले गए। मेरा तो कोई एक व्यक्ति भी अपना न रहा, मेरा तो कोई भी नहीं है। मैं भी जब मर जाऊंगा, स्त्री पुत्र वैभव आदि कुछ भी साथ न जाएगा। जब आया तब भी कौन साथी था यही नहीं जान पाया। अब जाने के समय भी कौन मेरे भवसागर के पार करता है, चिर संगी है, उन्हें भी क्या पहचान नहीं पाऊंगा। मैंने अब जान लिया है, पहचान लिया है, मेरी माँ है, मेरी सर्वस्व धन है। और कोई कुछ भी कहे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं अपनी दिव्य माँ से ही सब कुछ कहूंगा। मेरी माँ है, वे मेरे इहलोक परलोक का आश्रय स्थल हैं। अग्नि परीक्षाएं आती हैं तो आए, वे मुझे उनमें तपाकर अपना बना ले। उनका अपना बनकर इहलोक परलोक में मैं नाचता गाता फिरूंगा। जय माँ, जय माँ, जय माँ।